الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنفوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأصنام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں سورہ مائدہ کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں معارف القرآن کی جلد نمبر 3 میں سے، اور آیت نمبر 3 کی تفسیر ہم پچھلے کچھ ہفتوں سے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ معروف مسائل میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کافی ساری تفصیل بھی لکھی ہے، اور ہم پھر تفصیل میں کچھ زیادہ ہی تفصیل اور کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ابھی تک اس آیت کے معروف مسائل کے آخری صفحے تک پہنچے تھے، جس میں بات جو ہے وہ نعمت کی تکمیل کے اوپر ہو رہی تھی نا، کہ یہ جو اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو اس میں کیا معارف ہیں، کیا مسائل ہیں، تو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم پیج نمبر 38 سے پڑھتے ہیں کہ تیسرا انعام جو اس امت مرحومہ، یعنی یہ امت جس کے اوپر خاص اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، ٹھیک ہے، امت مرحومہ کا یہ مطلب ہے، یعنی کہ یہ مرحوم ہو گئی ہے، دنیا سے گزر گئی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح جیسے ہم مرحوم کسی ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو دنیا سے گزر چکا ہوتا ہے، تو یہ امت بھی گزر چکی نہیں بلکہ اس کے اوپر رحم کیا گیا. مرحوم بھی ہم اسی وجہ سے کسی انسان کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. تو تیسرا انعام جو اس امت مرحومہ کے لیے اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے تکوینی انتخاب کے ذریعے دین اسلام کو منتخب فرمایا، جو ہر حیثیت سے کامل و مکمل ہے اور جس پر نجات کا انحصار ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات پچھلے ہفتے کافی تفصیل سے ہم نے کری تھی کہ دین اسلام تو آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور ہر نبی کو دین اسلام ہی دیا ہے، تو اس امت کے لیے دین اسلام کا تکوینی انتخاب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گویا کہ ایک تحفہ ہے اس امت کے لیے، جو کہ پچھلی کسی امت کو نہیں دیا گیا، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ کیا خیال ہے آپ سے نہ پوچھ لیں؟ کتنا یاد ہے پچھلی والی کلاس کا، کس نے نوٹس لکھے تھے؟ ظاہر ہے اسی کو زیادہ یاد ہوگا جس نے نہیں لکھا تھا، اور ماشاءاللہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ جیسی جس کے پاس میموری ہے تو وہ نوٹس لکھے بغیر ہی اس کو یاد ہوگا. تو کیا سمجھایا تھا اس کے اوپر کہ بھئی دین اسلام تو ہر امت کو ملا، تو یہاں پر جو ہے وہ دین اسلام کا تکوینی انتخاب اور یہ بڑی خصوصی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا فرق ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دس؟ جی، مردوں کی کلاس میں کافی عرصہ ہو گیا، شاید سوال جواب ہوئے ہوئے. ہاں جی، کیا سمجھایا تھا؟ ریسٹ آف دی اماز، ریسٹ آف دی امتس فار گاٹ ایوری تھنگ ایکسپٹ مغیبات، فار گاٹ ایوری تھنگ یا چینج تھنگس ایکسپٹ مغیبات. تو ٹھیک ہے، ماشاء اللہ یہ والا پوائنٹ آپ کو یاد ہے، تو اس کا اس پوائنٹ سے کیا تعلق ہے؟ یہ دین ہمارے ایفرٹس کو کہتے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ سوال سے تعلق جواب کا ہونا چاہیے نا. تو سوال تو یہ ہے کہ بھائی جب اسلام تو ہر نبی کو دیا گیا، हर उम्मत को दिया गया, तो ये क्यों कह रहे हैं कि आखिरी नबी की उम्मत को इस्लाम दिया गया इस उम्मत मरहूमा के लिए, ये क्यों कह रहे हैं? मिसाल से समझाया था, वो मिसाल किसको याद है? मैं बनाया वाली मिसाल थी वैसे, वो क्या बनाया था अभी रिसेंटली याद आया? जी, बिरयानी बनाई थी ये हमारे सोहेल भाई, 2 4 दिन पहले मैं बनाया बिरयानी, वो घर पे दे करके गए कि मैं बनाया, ठीक है? तो वो बिरयानी ही थी, राइट? तो बिरयानी की मिसाल दी थी, तुम बिरयानी की मिसाल से याद आ गया कि क्या मिसाल क्या बताया था कि भाई इस उम्मत को इस्लाम दिया गया, दूसरी उम्मतों को भी तो दिया गया, तो दूसरी उम्मत के बारे में ये क्यों नहीं कह रहे? दीन वॉज रीसेट, बार बार आप दीन वॉज रीसेट बोल रहे, तो सारे मसले नहीं हल हो जाएंगे ना भाई? भाई बिरयानी की मिसाल दी थी ना कि बिरयानी तो बिरयानी उसी वक्त कहलाएगी कि जब उसमें बिरयानी का मसाला डालेंगे। अब आप बिरयानी की शक्लो सूरत चेंज कर दें और फिर तोले रहे हैं कि नहीं यही बिरयानी है, यही बिरयानी है, तो वो तो बिरयानी नहीं होगी ना। उसी तरीके से दीन इस्लाम का भी यही मामला है, ठीक है? द प्रीवियस उम्मा वर कॉलिंग इट बिरयानी बट मेकिंग इट डिफरेंटली, यानी जो दीन इस्लाम पिछली उम्मतों को भी दिया गया लेकिन उन्होंने दीन इस्लाम में तब्दीली कर दी, तो अब उनके पास तो दीन इस्लाम नहीं रहा ना, अब तो उनके पास दीन इस्लाम नहीं रहा, अब तो वो कुछ और चीज बन गई, जिसको यहूदियत कहते हैं, जिसको नसरानियत कहते हैं, जिसको बुद्ध मत कहते हैं, जिसको हिंदुइज्म कहते हैं, जिसको मजूसियत कहते हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ शक्लें बन गई, वो इस्लाम तो ना रहा ना, ठीक है? दिया तो गया था उनको इस्लाम लेकिन वो इस्लाम रहा ना, क्योंकि उन्होंने इसमें चेंज कर दिया। इस उम्मत की खासियत क्या है कि इसको अल्लाह ताला ने वही दीन दिया, दीन इस्लाम, लेकिन इस उम्मत ने उसकी हिफाजत भी करी, या अल्लाह ताला ने इससे करवाई, तौफीक दी अल्लाह ताला ने हिफाजत करने की, ठीक है? अब आपको याद आ रहा है न्यारी मसाला डालकर बिरयानी में, ठीक है? तो इस वजह से इस उम्मत के पास इस्लाम है, जबकि पिछली उम्मतों ने इस्लाम को तब्दील करके यहूदियत नसरानियत और कुछ और बना दिया, ठीक है? तो ये आपको समझाया था पिछली क्लास में बिरयानी की मिसाल से। आगे फरमाते हैं कि खुलासा कलाम ये है कि इस आयत ने ये बतला दिया कि उम्मत मरहूमा के लिए दीन इस्लाम एक बड़ी नेमत है जो उनको बख्शी गई है, और यही दीन है जो हर हैसियत और जहत से कामिल व मुकम्मल है, ना इसके बाद कोई नया दीन आएगा और ना इसमें कोई कमी बेशी की जाएगी, ठीक है ना? अब एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस ये नहीं होने वाली है इस दीन के अंदर, ठीक है? यही वजह थी कि जब ये आयत नाजिल हुई तो आम मुसलमान उसको सुनकर खुश हो रहे थे, यानी इतनी बड़ी नेमत हम पे, नेमत तमाम हो गई अल्लाह ताला की, मुकम्मल हो गया दीन है, सब कुछ बड़ी अच्छी बातें हैं, ये तो खुशखबरी हो रही है। लेकिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन पर गिरियाहतारी था, रो रहे हैं बैठ करके, इस मौके पर वो रो रहे हैं, और उस मौके पर जबकि इजा जा नसरुल्लाह वल फतह वाली नाजिल हो रही है, तो उस मौके पर कौन रो रहे हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं, ठीक है ना? ये दोनों जो है ना, ये पीक ऑफ इंटेलेक्चुअल हाइट पर थे, ये दोनों हजरत सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस, सबसे ज्यादा इनकी समझ जो थी ना वो सबसे ऊंची थी, अबू बकर सिद्दीक रहता की तो उनसे भी ऊंची थी, उमर फारूक रहता उनके पीछे पीछे, ठीक है? सेकंड नंबर पे ये बिल्कुल फोकस लोग, एब्सोल्युटली 100% फोकस्ड, ये मुंतशिर लोग नहीं थे, ठीक है ना? तो 100% फोकस होगा, 100% उसकी जो है वो अकल जो है वो तेज होगी। तो इस मौके पर ये मौजूद थे, इनको रोना आ गया, ठीक है ना? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे रोने की वजह पूछी, तो अर्ज किया कि इस आयत से इसकी तरफ इशारा मालूम होता है कि अब आपका कयाम इस दुनिया में बहुत कम है, क्योंकि तकमील के साथ इरसाले रसूल की जरूरत भी पूरी हो चुकी है, आपके भेजे जाने की जरूरत भी पूरी हो चुकी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तस्दीक फरमाई, यानी तुमने बिल्कुल सही समझा, ठीक है? कि आपने बिल्कुल सही समझा कि ऐसा ही है। ठीक है, तो दिस वॉज वन ऑफ द साइंस ऑफ नबी अलैहिस्सलाम डिपार्टिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ठीक है ना, आप ने बहुत सारे इशारे भी दिए और बहुत सारे जो है वो यानी क्या कहते हैं उसको स्पेसिफिक अल्फाज भी इस्तेमाल करके बताया कि अब मेरे दिन खत्म हो चुके हैं, अब मैं जाने हूं, अब मैं तुम्हारे दिन में आने लाऊंगा। ये तो होता है ना, आप एक्सप्लिसिटली बताना, और इम्प्लिसिटली भी इस तरह के तरीकों में इम्प्लिसिटली बताया और दूसरे मौकों पर एक्सप्लिसिटली बताया कि अब मैं जाने वाला। तफसीर इब्न कसीर व बहर मुहीत वगैरह में ये बात मनकूल है। चुनाचे आने वाले वक्त ने बतला दिया कि इसके सिर्फ 81 रोज बाद, 81 रोज के बाद आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। ठीक है, तो अब जब रुखसत हो गए तो फिर तो सभी रो रहे थे, लेकिन पहले से रोने वाले अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला। ठीक है, आखिर आयत में फमन तुर्रा फी मखमसतिन, फमन इज तुर्रा, ठीक है, के पस जो इज़्तिरार में हो, फी मखमसतिन, ठीक है, यानी मखमसा, वैसे तो हम उर्दू जुबान में मखमसा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कंफ्यूजन के लिए, लेकिन अरबी जुबान के अंदर जो मखमसा का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है तो उसका तर्जुमा बड़ों ने कैसे किया कि भूख में, ठीक है, यानी भूख इतनी लगी हुई हो कि दिमाग काम नहीं करो। होता है ना जब शुगर लो होती है, शुगर वालों को ये बात ज्यादा पता है कि जब शुगर लो होती है तो दिमाग काम करना छोड़ देता है या खराब हो जाता है, ठीक है, आप थिंक नहीं कर सकते स्ट्रेट, सही, उसी तरीके से भूख में भी इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो उर्दू जुबान के अंदर बहुत सारे अरबी जुबान के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन कामिल मानी में नहीं, बल्कि उसके किसी एक जहत के मानी को उर्दू जुबान में अडॉप्ट कर लिया गया। पूरे मुकम्मल मानी जो है वो अरबी जुबान ही की खासियत है, ठीक है, उर्दू जुबान के अंदर ये वाली खासियत नहीं है। तो मखमसतन का जो लफ्ज है वो भूख के लिए इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। तो फरमाते हैं कि इस आयत फमन फुर्रा फी मखमसतन का ताल्लुक उन जानवरों से है जिनकी हुरमत का बयान शुरू आयत में आया है, यानी इसी आयत के शुरू में इतने सारे जो मुनखनकतुन और मौकूज़तुन मुतरद्दियतुन नतीहतुन वाला वगैरह, ठीक है, तो उन जानवरों के का 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 जिक्र है यहाँ पर जिनकी हुरमत का बयान शुरुआत में आया है। और इस जुमले का मतलब एक खास हालत को आम कायदे से मुस्तस्ना करना है, एग्जम्प्ट करना है, आम कायदे से एग्जम्प्ट करना है, कि आम कायदा क्या है, हराम इज हराम, ठीक है ना, नहीं खा सकते हराम को, बहुत बड़ा गुना होगा अगर हराम का एक लुकमा भी ले लिया, हराम का एक टुकड़ा भी ले लिया, गुना होगा, ये कायदा है, ये उसूल है। लेकिन यहाँ पर एग्जेम्पशन कि अगर कोई शख्स भूख की शिद्दत से बेताब हो जाए और खतरा मौत का लाहिक हो जाए, तो ऐसी हालत में अगर वो मजकूरा बाला हराम जानवरों में से कुछ खा ले तो उसके लिए गुनाह नहीं, ठीक है, मगर शर्त यह है कि पेट भरना और लज्जत हासिल करना मकसूद ना हो, ठीक है, क्योंकि हराम को खाना गुनाह है और गुनाह के अंदर लज्जत हासिल करना, गुनाह से जो है वो अपने पेट को भरना, ठीक है, ये तो ईमान वाले के लिए जायज ही नहीं, ये तो ईमान वाले से तसव्वुर ही इस बात का नहीं किया कि वो गुनाह में खुश हो रहा हो, राइट, गुनाह को एंजॉय कर रहा हो और गुनाह से जो है वो अपना पेट या अपनी जेब भर रहा हो, ईमान वाला ये कैसे कर सकता है, ठीक है ना, क्यों ईमान वाला ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि जो ईमान वाला होता है ना, जिसका ईमान सहाबा के ईमान के स्टैंडर्ड पे है ना, भाई अल्लाह ताला ने सहाबा को हमारे ईमान का स्टैंडर्ड बनाया ना, फइन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ठीक है, कि जैसे तुम ईमान लाए हो ना ए मेरे नबी के सहाबा, जैसा ये जैसा तुम ईमान लाए हो, जब ये वैसा ईमान लाएंगे तब ये हिदायत पर होंगे। तो ये तो अकीदे से मुताल्लिक है कि हमारे अकायद बिल्कुल वैसे ही होने शर्त है, लाजिम है, जैसे सहाबा के अकायद, ठीक है, तो ये तो हो गया ना ईमान की सेहत, ईमान की बल्कि जिंदगी, कि भाई अगर वैसे अकायद हैं तो ईमान है, और अगर वैसे अकायद नहीं है तो ईमान नहीं है, ठीक है, ईमान नहीं है। अगर आपके अकायद सहाबा के अकायद से हटके कुछ और बन गए, ठीक है, तो फिर आपका ईमान नहीं है, खलास, ठीक है। लेकिन सहाबा के ईमान के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान अजीम शान के अंदर एक और भी बात फरमाते हैं, ठीक है, वो ये क्या कि हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, ठीक है, कि उनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान को महबूब बना दिया था, महबूब बना दिया था और खूबसूरत बना दिया था। यानी खूबसूरत चीज क्या होती है, जिसको दिल देख करके ना इंसान खुश होता है, ठीक है, उसका दिल खुश होता है, उसको खूबसूरत चीज के ऊपर मोहब्बत आती है। तो सहाबा के दिल में अल्लाह ताला ने ईमान को महबूब बना दिया था और खूबसूरत बना दिया था, ये अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, ठीक है, सूरह हुजरात की आयत है, और इसके आगे भी फरमा रहे हैं, पक्कर रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूका वल असयान, ठीक है, कुफर और फिस्क और नाफरमानी को तुम्हारे दिलों में मकरूह, नापसंदीदा, अनप्लेजेंट बना दिया, ठीक है। तो अब जिसके दिल में गुनाह, मकरूह, राइट, घिन आती है उसको गुनाह से, तो वो गुनाह करके खुश होगा या उसको घिन आएगी, उसको नफरत महसूस होगी, वो गुनाह के साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ईमान वाले को तो यही मामला है कि वो तो जो हराम चीज है वो तो उससे अपने पेट को भर ही नहीं सकता, वो तो उसके अंदर खुश हो ही नहीं सकता। अब हम अपने हालात को देख लें कि हम किस किस्म के ईमान वाले हैं, कौन सी ईमान की डेफिनेशन पे हम पूरे उतरते हैं, ठीक है ना, कि हम तो गुनाह करके खुश हो रहे होते हैं, गुनाह को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, है ना, और जो है वो बिल्कुल ही एज इफ नथिंग, नो प्रॉब्लम, है ना, ना नाच गाना हो रहा होता है हमारे अपने फैमिली वेडिंग्स के अंदर, राइट, एंड वी हैव एब्सोल्यूटली नो इशू, बस वो तो ये तो खुशी का वक्त है, राइट, तो खुशी के वक्त में तो ये सब कुछ होता ही है। क्या मतलब गुनाह हो रहा है, अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, फिस्क हो रहा है, फजूर हो रहा है, एंड आपको कोई मसला ही नहीं है इसके ऊपर, है, तो गुनाह यानी खुशी के वक्त जो है वो गुनाह गुनाह नहीं रहता आपके लिए, गुना आपके लिए मकरूह नहीं रहता, वो आपके लिए पसंदीदा बन जाता है, घर के बच्चे कर रहे हैं, है ना, बच्चों को जो है वो खुश होने दो, बेपर्दगी हो रही है, ये तो फैमिली गैदरिंग का टाइम है, राइट, ये तो फैमिली पिकनिक का वक्त है, यहाँ पे क्यों जो है वो मौलवी बन रहे हो, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हो रही है, कोई मसला ही कोई नहीं है, और साथ साथ माशाल्लाह कुरान भी हिफ्ज कर रहे हैं और कुरान की जो है वो आयतें याद भी कर रहे हैं और उसको जो है तफसीर भी पढ़ रहे हैं और लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर धड़ाधड़ भेजे भी चले जा रहे हैं और जो है वो मस्जिद जाके नमाज भी पढ़ते हैं 5 वक्त की जमात के साथ, राइट, यानी दीनदार भी इतने शदीद किस्म के, और साथ साथ जो है वो गुनाह के बारे में ये एटीट्यूड है, बच्चे हैं कोई मसला नहीं है करने दो, ये तो खुशी का मौका है, रौनक लग रही है, जैसे आपने लिखा रौनक लग रही है, या वो हमारे जो पीर मोहम्मद असलम साहब जो फरमाते हैं, ये क्या एक खास लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, पिंडी वाला शायद वो लफ्ज है, क्या लफ्ज है मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये किस किस्म का आपका दीन, कौन सा दीन, कहाँ का दीन, तो ये तो भाई दीन इस्लाम नहीं है, ये तो कोई दीन इस्लाम नहीं है, ठीक है। तो ये तो फरमाया ना कि भूख की शिद्दत से बेताब हो जाए और खतरा मौत का लाहिक हो जाए, ऐसी हालत में अगर वो मस्कूरा बाला हराम जानवरों में से कुछ खा ले तो वो उसके लिए गुनाह नहीं। हाँ, शुगल मेला, जजाकल, शुगल मेला का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, गालबन पिंडी इस्लामाबाद में ये शुगल मेला बहुत कहा जाता है, शुगल मेला, इसमें इसमें कौन सा ही है, दीन को खामखा गुजर रहे हैं, ठीक है, नेकी का शौक है लेकिन गुनाह की कराहियत नहीं है, है ना, तो आपका ईमान तो फिर सहाबा के ईमान के जैसा बिल्कुल भी ना हुआ, अब आप खैर मनाएं अपने ईमान की, है भी कि नहीं है पता नहीं, ठीक है ना। तो शर्त यह है कि पेट भरना और लज्जत हासिल करना मकसूद ना, बल्कि सिर्फ इतना खा ले जिससे इस्तिरार की कैफियत रफा हो जाए, क्योंकि ये गुनाह है, ठीक है, गुनाह की जो आपको एक छूट दी जा रही है ना, वो सिर्फ इस भूख अपनी जान बचाने के लिए दी जा रही है, और बस इससे ज्यादा कि ना तो अल्लाह ताला ने आपको इजाजत दी है और ना जो है वो एक ईमान वाला जो है वो उससे तवक्कुफ की जा सकती है कि वो खुशी दिखाएगा हराम चीज से। आगे फरमाते हैं कि आयत में गैर मुतजानिफिल इस्म का यही मतलब है कि इस खाने में उसका मेलान गुनाह की तरफ ना हो बल्कि सिर्फ इज़्तिरार का रफा करना, ठीक है, दिल का मेलान, रगबत, लामरगूबी इल्ला अल्लाह, है ना, दिल की रगबत जो है ना वो गुनाह की अल्लाह के गैर की तरफ ना हो, अल्लाह की नाफरमानी की तरफ ना हो, ठीक है। मजबूरी की कैफियत में ये वाली जो हरकत करी है तो उसको अल्लाह ताला ने भी रिलैक्स किया। आखिर में, अच्छा, आखिर में फइन अल्लाह गफूर रहीम से इस तरफ इशारा है। गफूर रहीम वाली सिफत यहाँ पे क्यों इस्तेमाल करी, राइट? हलीमुल करीम भी इस्तेमाल कर सकते थे, और भी बहुत सारी सिफात कुरान मजीद में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, लेकिन जो मौजू चल रहा होता है ना उससे रिलेटेड सिफात अल्लाह ताला अपनी बयान फरमाते हैं अपने कलाम के अंदर। तो यहाँ पर गफूर और रहीम, मगफिरत करने वाला, माफ करने वाला और रहमत फरमाने वाला से इस तरफ इशारा है कि ये मुहर्रमात उस वक्त भी अपनी जगह हराम व नाजायज ही हैं, सिर्फ उस शख्स को इस्तेरार की वजह से माफ कर दिया गया, राइट? क्या मतलब, डेफिनेशंस डिड नॉट चेंज। ये नहीं हुआ कि तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, तुम मरने के करीब हो, तो रीडिफाइन रिलीजन, नाउ यू कैन रीडिफाइन रिलीजन, अब जो है ना तुम हराम को हलाल करार दो और फिर उसके बाद उसको खा लो, नो, एब्सोल्यूटली नॉट, राइट? इवन अगर तुम मरने भी वाले हो ना और तुम गुनाह करने भी वाले हो, राइट, अपनी जान बचाने के लिए गुनाह कर रहे हो या इवन किसी गलती की वजह से तुम गुनाह कर भी रहे हो, बट तुम दीन को चेंज करने की कोशिश ना करना, रीडिफाइन करने की कोशिश ना करना, ठीक है ना। और यही हमें तो इसमें इशारा नजर आता है कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दो बड़ी बजाहिर बड़ी अलग अलग बातें फरमाई हैं इस एक आयत के अंदर। शुरू में क्या है इस आयत के अंदर, राइट, खाने पीने से मुताल्लिक, ये वाला गोश्त खाना हलाल है, ये वाला गोश्त खाना हराम है, ये वाला इस तरीके से जो अगर किया जाए तो खाना जायज नहीं है, और खाने पीने के बाद जो है वो अंतस्तकसिमु बिल अज़नाम के जो जुए के जो तीर होते हैं तो उनके जरिए से जो है वो तकसीम करना, ये हराम है, ज़ालिकुम फिस्क, ये सब फिस्क है, ठीक है ना। ये बात खाने पीने से रिलेटेड है, ये तो बहुत ही आम छोटी सी बात लगती है ना, खाने पीने से रिलेटेड बातें, है ना भी, बड़े लोग तो खाने पीने की बातें नहीं करते ना, बड़े लोग तो जो है वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है ना। खैर, अल्लाह ताला तो हर दर्जे की बात करते हैं, मच्छर की भी मिसाल देते हैं अपने कुरान के अंदर, लेकिन हम ये इस एक आयत के अंदर जो इंतहाई कॉन्ट्रास्टिंग किस्म की बात, इसकी बात कर रहे हैं। एक तरफ खाने पीने की बातें हो रही हैं, एक तरफ जो है वो तकसीम की बात हो रही है, और दूसरी बात क्या हो चल रही है, अलयौमा यइस अल्लज़ीना कफरू मिन दीनकुम फला तख्शौहुम वख्शौनी। क्या मतलब कि काफिर जो है ना वो आज के दिन मायूस हो चुके हैं तुम्हारे दिन से, दीन से क्या मतलब मायूस हो चुके हैं कि अब जो है वो तुम्हारा दीन काफिरों को फायदा नहीं पहुंचाएगा, इस बात से मायूस हो गए। मायूसी तो उस वक्त होती है ना कि भाई जब फायदा नजर आ रहा होता है, अब फायदा जो है वो नहीं नजर आ रहा होता, अब मायूसी हो जाती है, राइट? यू लूज होप, नहीं, दे नेवर हैड होप फ्रॉम इस्लाम। किस बात का उनको होप था कि वो इस दीन को तब्दील कर सकेंगे यानी खत्म कर सकेंगे, बिरयानी को चेंज कर देंगे तो वो बिरयानी रहेगी नहीं यानी खत्म हो जाएगी बिरयानी, अब तो वो कुछ और चीज बन जाएगी ना, ठीक है ना। तो उनकी ये उम्मीद खत्म हो गई कि वो इस दीन की डेफिनेशंस को अब चेंज नहीं कर सकते हैं, इस बात से वो मायूस हो गए, ठीक है। और फिर फरमाया अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, यानी ओवरऑल अल्लाह के दीन के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं, इतनी बड़ी बात, यानी इंसानियत के लिए जो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है दीन, उसकी बात कर रहे हैं, कहाँ जो है वो गिर के मर जाए और चोट से मर जाए और दरिंदा खा ले और उसको जो है वो यहाँ पे ज़बह किया जाए, वहां पे ज़बह किया जाए तो वो हराम हो जाता है, और कहाँ जो है वो ओवरऑल दीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सबसे बड़ी नेमत की अपनी बात कर रहे हैं, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। यानी ग्लोबल लेवल की बात, यूनिवर्सल लेवल की बात एकदम से करनी शुरू हो गए, और फिर एकदम से आ गए खाने के ऊपर। ومن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم, ठीक है। फिर खाने के ऊपर आ गए, खाने से शुरू किया, खाने पे खत्म किया, और बीच में जो है वो ऐसी बड़ी रियलिटी बयान फरमा दी कि काफिर मायूस हो गए हैं तुम्हारे दीन को तब्दील करने से, और हमने जो है मुकम्मल कर दिया, और हमने अपनी नेमत जो है वो तमाम कर दी। तो क्या समझ में आता है? हमारे तो समझ में आते हैं, एंड वी डोंट वी नॉट सेइंग कि भाई दिस इज व्हाट अल्लाह सुब्हानहू तआला मींस, क्योंकि मुफस्सिरीन हमारे अकाबरीन ने हमें मिला नहीं कोई ऐसा कि इसके बारे में ऐसे लिखा हो, ठीक है। लेकिन जैसे कि हालात चल रहे हैं, हम अपने हिसाब से अपनी हिदायत के लिए बात लेंगे ना कुरान मजीद के अंदर, तो क्या बात समझ में आती है कि इस सूरत के, हम तो अभी तीसरी आयत के ऊपर है, आप पहली आयत से देखें बिल्कुल इब्तिदा से क्या मजमून चल रहा है इस सूरत के अंदर, सूरह मायदा के अंदर। पहली बात तो यह है कि ईमान वालों को खिताब किया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, काफिरों को नहीं खिताब किया जा रहा, मुनाफिकीन को खिताब नहीं किया जा रहा, बल्कि ईमान वालों को खिताब किया जा रहा है, ठीक है। औफू बिल्उक़ूद, उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमि इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैदि व अंतुम हुरम, शरीयत के अहकामात बयान फरमाए जा रहे हैं। और हत्ता के पहली ही आयत के आखिर में फरमाते हैं इन अल्लाह यहकुमु मा युरीद, कि बेशक अल्लाह ताला तो जो चाहता है हुक्म करता है, राइट। अल्लाह की मर्जी, जो भी हुक्म करे वो अल्लाह है, वो है तुम्हारा खालिक, वो है तुम्हारा मालिक, वो है तुम्हारा राजिक, राइट। तुम्हें जो खाना मिलता है वो तो दूर की बात, तुम्हें जो सांस मिलती है ना, है जो तुम ब्रीद करते हो ना एयर को, वो भी अल्लाह ताला तुम्हें देता है। तो उसकी मर्जी चलेगी, तुम्हारी मर्जी चलेगी, या किसी और की मर्जी चलेगी? इन अल्लाह यहकुमु मा युरीद। तो इस सूरत के शुरू से किस मजमून पे बात हो रही है? अहकामात पे बात हो रही, शरीयत के अहकामात पे बात हो रही, ठीक है। तो दीन मुकम्मल हो गया, यानी अहकामात मुकम्मल हो गए, क्योंकि इसके बाद अहकामात वाली कोई आयत आई नहीं, ठीक है। तो क्या मतलब कि जो अल्लाह के अहकामात हैं ना वो अटल हैं, वो अटल हैं, वो तब्दील ना हो सकते हैं और ना तुम कोशिश करना उनको तब्दील करने की, ठीक है ना। प्रिंसिपल्स हैव बिन सेट, ठीक है ना, दीन हैज बिन रीसेट, ठीक है, अहकामात डन हो चुके हैं। काफिर इससे मायूस हो गए कि वो इसको चेंज कर सकें, तुम भी इस बात का वहम भी अपने दिल में नहीं लाने देना, आने देना कि तुम जो है ना वो किसी भी फायदे की खातिर, किसी भी उम्मीद में आकर के दीन के किसी हुक्म को चेंज करो, ठीक है ना। हरगिज इसकी कोशिश ना करना। लेकिन ये है थ्योरी के बारे में, ये है प्रिंसिपल्स के बारे में, ये है डेफिनेशंस के बारे में, उनको तब्दील करने की कोशिश ना करना, ठीक है। लेकिन जहां पर अमल की बात आती है, अमल की, राइट, तो उसके अंदर जो है ना वो हम तुम्हें रिलैक्स कर सकते हैं, उसमें हम तुम्हें एग्जेम्पशन दे सकते हैं, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। अगर तुम ऐसी मुश्किल में फंस जाओ कि तुम्हारी जान पे बन जाए, इतनी शदीद भूख लगी हो, कोई और चीज नहीं हो तुम्हारी भूख को खत्म करने के लिए, राइट, तो अमल में तुम्हारे लिए रिलैक्सेशन है। तुम गुनाह की मैलान के, गुनाह की इंक्लिनेशन के बगैर, यानी अल्लाह ताला को की नाफरमानी करने की मोहब्बत दिल में लाए बगैर तुम हराम खा लोगे, हम तुम्हें माफ कर देंगे, हम तुम्हें माफ कर देंगे, इन अल्लाह गफूर रहीम, ठीक है। तुम्हारी कमी को तही हम कबूल कर लेंगे, ठीक है, हम तुम्हारे साथ नरमी का मामला कर देंगे, तुम्हारी लग्जिश माफ कर दी जाएगी, बट नॉट इफ यू ट्राई टू चेंज द दीन। अगर तुमने वो हरकत करी ना डेफिनेशंस को चेंज करने की, तुम नहीं बख्शे जाओगे, तुम नहीं बख्शे जाओगे, ठीक है, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही, ठीक है जी। तो दिस इज दैट इम्पोर्टेंट। और आज के दौर में जिसमें हम गुजर रहे हैं ना, इसमें काफिर को फिर से एक उम्मीद सी लग गई है कि ये लोग तो जो है ना, ये तो पहले ही खुद ही इस चक्कर में है कि अपने दीन को तब्दील कर लें। अब हम भी जो है वो इनसे डिमांड कर सकते हैं कि चलो चलो अपनी दीन को चेंज करो, और जो है वो फिर हम बाहों में बाहें डाल करके प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे, राइट। ईसाई, यहूदी, मुसलमान, कोई और रिलीजन हो, सब मिलजुल करके रहेंगे, कोई मसला ही कोई नहीं है, है ना। बस तुम अपने दीन में तब्दीलियां कर लो, अहकामात को चेंज कर लो, ठीक है। ये इस वक्त डंके की चोट पे काफिर मुसलमानों को कह रहा है, और कितने मुसलमान हैं जो कि उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, कितने मुसलमान हैं, और कितने मुसलमान हैं जिनको ये बात ही समझ में नहीं आ रही कि काफिर कह क्या रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा। यानी कुछ लोग तो हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो अजीब गरीब किस्म के जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि कह क्या रहा है, क्या ये कोई गलत बात कह रहा है, क्या कोई सही बात कह रहा है, क्या कर रहा है, करना क्या चाह रहा है ये असल में हमारे साथ, ठीक है ना। इस दौर से हम गुजर रहे हैं। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, औजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, यसअलूनक माज़ा उहिल्ला लहु, कि ये आपसे सवाल करते हैं कि कौन सी चीजें इनके लिए, लहुम इनके लिए हलाल हैं, हलाल की गई हैं। कुल कह दीजिए इनसे, उहिल्ला लकुम, हलाल की गई हैं तुम्हारे लिए, अत्तय्यिबात, पाकीज़ा चीजें, ठीक है। पाकीज़गी अल्लाह ताला को कितनी पसंद है, इन अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, राइट। अल्लाह ताला तव्वाबीन को, जो कि रूहानी तौर पर पाकी इख्तियार करते हैं यानी गुनाहों से तौबा करते हैं, उनको तव्वाबीन, और जो जाहिरी तौर पर पाकीज़गी का एहतमाम करते हैं मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए तय्यबात को हलाल किया है। कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यबात वमा अल्लमतुम मिनल जवारिही, और जो तुमने सिखाया या जो तुम इल्म देते हो, मिनल जवारिह, जवारिह को, ये मिन जो है वो बयानिया होगा, कि वो जो जवारिह जानवर है, जवारिह मतलब जो एग्रेसिव, राइट, यानी जारहियत, जारहियत का लफ्ज होता है ना, एग्रेशन करना, ठीक है ना। फलाने मुल्क ने उस पर जारहियत कर दी यानी अटैक कर दिया, अटैक करने वाले जानवर, मुकल्लबीना, ठीक है, कि जो जिनको के तुम दौड़ाते हो या सिखाते हो बल्कि, ठीक है, जिसकी तफसील आगे आ रही है, वहशी भी इनको कहते हैं। खैर, वहशी नहीं, वहशी का लफ्ज सही नहीं, क्योंकि वहशी का जो लफ्ज है ना, ये जंगल में रहने वालों के लिए इस्तेमाल होता है, जो के जंगली गायें भी वहशी कहलाती है, ठीक है। तो वो जवारे को थोड़ी होती है गाय, जो नील गाय होती है, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे वहशी जानवर हैं, लेकिन ये यहाँ पर जो के अटैक करने वाले, यानी जिनको कार्निवोरस भी कहते हैं, तो मुकल्लबीन के, जिनको के तुम सिखाते हो, ठीक है। ये आगे इसकी तफसील आ रही, तो अल्लिमूना हुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, कि तुम उनको वो इल्म सिखाते हो जो जो के अल्लाह के सिखाए हुए इल्म में से है, यानी तुम्हारे, तुम जो इल्म जानवरों को सिखाते हो ना, ये तुमने अपने अकल से नहीं सीखा है, अपने तजुर्बों से नहीं सीखा है, बल्कि ये वो इल्म है जो कि अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है, ठीक है ना। अल्लाह ताला हमें निकलने नहीं देते इस लिमिट से आगे, कि भाई ये समझना शुरू होगा कि तुम सिखाते हो, यहाँ पे बात मुकम्मल हो सकती थी, वमा अल्लम तुम मिनल जवार ही मुकल्लबीन, बात खत्म हो गई है, कि जो तुमने इन वैशी, ये जो शिकार पर दौड़ने वाले शिकारी जानवर हैं, तुमने जो इल्म को सिखाया, लेकिन हमारा रब मुरब्बी है, हमारा तरबियत करने वाला है, ठीक है। वो हमारी सोचों को कंटेन विद इन द लिमिट्स, है ना, ये मत यानी फूलना मत शुरू हो जाना, हाँ भाई हमारे पास ये इल्म है, हम तो जानवरों को सिखा देते हैं, हम तो जानवरों को इल्म दे देते हैं, हम खुद कितने बड़े आलिम होंगे, फौरन फरमा दिया, तो अल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, राइट। ये इल्म तुम्हारा अपना नहीं है, जाती नहीं है, ये तो वो है जो कि अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है, ठीक है। जैसे कि मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, कि वो जो के खर्च करते हैं ना अपने माल में से, वो माल है जो कि अल्लाह ने उनको दिया है, अल्लाह ने उनको दिया है, इन्होंने अपनी अकल से, अपनी समझ से, अपने इंटेलेक्ट से, अपने मेहनतों से नहीं कमाया, अल्लाह ने इनको इल्म दिया है, ठीक ठीक है, मुरब्बी का ही काम होता है। मुझे याद आया इस मौके पर आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि हम हमारे हजरत आए हुए थे, हमारे मुरब्बी, हमारे शेख, ठीक है। तो हमने उनके बयान में से कोई चीज पिक करी थी, वो बड़ी जबरदस्त हमें लगी थी हमें। हमने तो ये दोस्तों को कह रहे थे कि पूरे इज्तिमा का खुलासा हजरत का ये जुमला था, ठीक है। तो हमने हजरत से कहा कि हजरत जी, आपका जो ये जुमला था ना कि अल्लजीना वल्लजीना आमनु अशद्द हुब्बल लिल्लाह, कि इसमें अल्लाह ताला जो है वो ये नहीं कह रहे ईमान वालों को कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, शदीद मोहब्बत, बल्कि बता रहे हैं कि ईमान वाले तो अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करते हैं, ये बता रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जो हसीन होता है, जो कमाल वाला होता है, उसकी गैरत इस बात को गवारा नहीं करती कि वो किसी से कहे कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, बल्कि उसकी सिफात ऐसी होती हैं कि जो उसकी सिफात को देखता है वो उससे मोहब्बत किए बगैर रह नहीं सकता। तो अल्लाह ताला से फिर हमने इसमें से ड्राइव किया इस बात को कि यानी जैसे जैसे हम अल्लाह ताला की सिफात से वाकिफ होते चले जाएंगे, हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। अब इसमें कौन सी गलत बात है भाई? कोई गलत बात है? ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो हमने जो है ना अपने हजरत से कहा कि हजरत जी, अगर हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाएं कि हम जो है ना वो अल्लाह ताला की सिफात कुरान मजीद में से निकाल निकाल करके गोया के उसको कंबाइल करें और उन सिफात के ऊपर खास करके बात करें, तो सुनने वालों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी। जितना अल्लाह के बारे में जानेंगे, अल्लाह की सिफात के बारे में, नॉट जात के बारे में, बल्कि सिफात के बारे में, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी अल्लाह के बंदों में, ठीक है ना। तो हमने अपने जानते हुए हमने बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट जो है ना वो प्रपोजल दिया हजरत जी को। हजरत जी को कह नहीं रहे थे कि आप करें, मैं खुद कह रहा था मैं हम करें। हजरत जी ने सुन लिया, कोई कॉमेंट नहीं उसके ऊपर, कोई कॉमेंट नहीं उसके ऊपर कि भाई आपने, काशिफ साहब आपने बड़ा अच्छा समझा, हाँ जी बड़ा जबरदस्त काम है, करें आप इस वाले काम को, नहीं, नो कॉमेंट्स। क्या फरमाया आज? क्या फरमाया, किसी को याद है क्या फरमाया? क्योंकि बता तो चुके हैं मैं से आपसे कई लोगों को, क्या फरमाया था उसी ने, याद है किसी को? आपके सामने नहीं फरमाया था, वो तो गाड़ी में हम ही बैठे हुए थे खाली, तो हम ही कहा था, लेकिन क्या कहा था? क्योंकि मैं बता चुका हूँ क्या कहा था उसी ने। 3 मिनट रह गए खाली क्लास में। सुना करें ना गौर से, तो फिर याद भी रहेगा, ऐसी चीजें भूलता नहीं है इंसान। हसीनों हसीन ने ये नहीं कहा था, नहीं ये नहीं कहा था, हसीनों को हर बात सच थी, नहीं, क्या कहा था? हमारे हजरत ने सुन करके क्या फरमाया? काशिफ साहब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिमसेल्फ ब्रिंग्स क्लोजर टू हिम हूएवर ही विल्स, नॉट एग्जैक्टली बट समथिंग सिमिलर, समथिंग क्लोज। हम अल्लाह से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि, जी ठीक है, माशाल्लाह आप पहुंच रहे हैं उस तक, ठीक है ना। हजरत जी ने फरमाया, काशिफ साहब, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, बल्कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, ठीक है ना। अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, इस वजह से हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना। और फिर कुरान मजीद से दलील दी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, वयुहिब्बूनहुम, अब हाफिज साहब की जरूरत पड़ जाती है, हम गैर हाफिजों को हैं, क्या है वो आयत? कि युहिब्बूनहुम व युहिब्बूनहु, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, है ना, इस तरह से है ना, कि उसने मोहब्बत की इनसे, बाद में फरमाया कि इन्होंने मोहब्बत की उससे, अल्लाह से। अब ये बात क्या, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, है ना, कि अल्लाह मोहब्बत करता है इनसे, तब ये मोहब्बत करते हैं उन उससे, अल्लाह से, ठीक है ना। यानी पहले अल्लाह मोहब्बत करता है, फिर हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अब ये क्या तुक बनती है इस जुमले की? हजरत का जो जवाब है इसकी क्या तुक बनती है ना भाई? हम तो प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं, अल्लाह के बंदों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत को पैदा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, हम जो है वो अल्लाह की सिफात को जो है वो बयान करें, इकट्ठा करें, कंपाइल करें, ये करें वो करें, और आगे से हजरत जी ये फरमा रहे हैं। कोई तुक बनती है? कोई कोई कनेक्शन बनता है इन दोनों के दरमियान? कोई कनेक्शन नहीं बनता, मुझे तो कोई कनेक्शन नजर नहीं आता, बराह रास्त कोई कनेक्शन नजर नहीं आता, लेकिन क्या कनेक्शन है इसके? अब आपसे फिर ये सवाल करते हैं ताकि पता चले कि आपने कितनी बात सुनी और कितनी समझी। क्लास के अंदर क्या कनेक्शन है इन दोनों बातों के अंदर, या क्या ताल्लुक है इस बात का जो कि हम अभी कुरान मजीद के अंदर पढ़ रहे हैं। अल्लाह कहीं हम पर एहसान है कि हमें ये तौफीक देते दे। नहीं, अल्लाह की तौफीक नहीं। बंदा खैर ठीक है, मैंने भी एक दफा ही बात करी थी, पता नहीं 2-3 दफा तो करता ही है इस बात को। अब आपके जहन से वो चीज महव हो गई जो पीछे बात हो रही थी। ठीक है भाई, ये जो आयत पढ़ रहे थे, क्या आयत पढ़ रहे थे? वमा अल्लम तुम मिनल जवारिही मुकल्लबीना तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लाकुमुल अल्लामकुमुल्लाह। ये पढ़ते पढ़ते आपको ये वाकया सुनाना शुरू किया है ना। ठीक है, तो क्या बताया था इस वाली आयत के अंदर? इस वाली आयत के अंदर ये बताया था कि अल्लाह ताला क्या है हमारे ईमान वालों के, राइट, मुरब्बी हैं, तरबियत करते हैं, तरबियत करते हैं, मुरब्बी हैं। तो वो उनकी सोचों को गलत सिमत में जाने से रोकने का इंतजाम करते हैं, गलत सिमत में जाने से रोकने का इंतजाम करते हैं। दिस इज वॉट ए मुरब्बी इज सपोज टू डू। अभी आप लोगों को मैसेज भी भेजे, आज भेजा है कल भेजा था, कि मुरब्बी का काम होता है के गलत बात की रगबत ही पैदा ना होने दे, रगबत ही पैदा हो, यानी सोच ही गलत तरफ ना जाने दे। ठीक है, ऐसे बात करे, ऐसा माहौल प्रोवाइड करे के जो उसकी तरबियत में है उनकी सोच ही गलत तरफ ना जाने लगे। ये मुरब्बी का काम होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पे मुरब्बी का काम कर रहे हैं कि देखो, जो इल्म की बात हुई कि तुमने जानवरों को सिखाया, ये मत सोचना शुरू हो जाना कि तुम्हारे अंदर बड़ा इल्म है, तुम जानवरों तक को सिखा देते हो। याद रखना कि ये इल्म वो है जो मैंने तुम्हें दिया है। सोच ठिकाने आ गई, आउट ऑफ कंट्रोल होने से बच गई सोच, वही हमारे हजरत ने किया। ठीक है ना, कि बजाय इसके कि प्रोजेक्ट पे दादे दें, पीठ ठोकें, है ना, कोई टॉफी दें कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, जबरदस्त, क्या बात है आपकी, नहीं, फौरन से फिक्स किया कि ये जो आप अल्लाह की मोहब्बत की बातें कर रहे हैं ना काशिफ साहब, ये आपका कमाल नहीं है, बल्कि ये तो कमाल वाले का कमाल है, ये तो अल्लाह का कमाल है, राइट, कि वो हमसे मोहब्बत। ये नहीं कहा कि काशिफ साहब आपसे अल्लाह मोहब्बत करता है, उसमें भी काशिफ साहब जो है वो आपसे बाहर हो जाए हैं, तो फिर तो तरबियत ना हुई ना। ठीक है भाई, ये तो अल्लाह की बात है, अल्लाह का कमाल है कि वो हमसे मोहब्बत करता है, हमारा कोई कमाल नहीं है। ये मत सोचना शुरू हो जाइएगा कि अल्लाह की मोहब्बत का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मना नहीं किया उन्होंने, हजरत ने मना नहीं किया हमें कि नहीं नहीं आप ये काम नहीं कीजिएगा, ये नहीं किया, लेकिन फौरन फिक्सिंग के ऊपर तवज्जो गई, फौरन फिक्सिंग पे तवज्जो गई कि अल्लाह को मत, है ना, यानी अल्लाह की मोहब्बत की बात हो रही है, अल्लाह की मोहब्बत पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन शैतान ऐसे में भी अल्लाह को भुला सकता है। क्रेडिट अल्लाह को देने की बजाय अपने आप को देने के ऊपर हमें कन्विंस कर सकता है कि क्या बात है तुम्हारी, तुम तो अल्लाह की मोहब्बत का प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्या बात है तुम्हारी, तुम तो अल्लाह की मोहब्बत का प्रोजेक्ट कर रहे हो, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की मोहब्बत के ऊपर जो है वो मायल कर रहे हो, क्या बात है तुम्हारी, नहीं तुम्हारी कोई बात नहीं है, सारी बात अल्लाह की है, सारी बात अल्लाह की है, राइट, ये होता है मुरब्बी का काम, सोच की इस्लाह, सोच को जो है वो लाइन पे रखना। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में इस आयत में एग्जैक्टली यही फरमा रहे हैं कि तुम ये मत सोचना शुरू हो जाना कि तुम्हारे पर बड़ा इल्म आ गया, ये तो वही वही वो इल्म है जो कि हमने तुम्हें दिया। ठीक है, मिम्मा अल्लामकुमुल्लाह फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, बस खाओ उसमें से जो कि वो पकड़ करके तुम्हारे पास सुकून से आके रख दें। ठीक है ना, तुम्हारे पास पहुंचा दें। अब ये कुत्ते के शिकार और बाज के शिकार के बारे में बात हो रही है, इसकी तफसील इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में जाहिर होगी इंशाल्लाह। वस्कुरु वस्कुरु स्मल्लाहि अलैहि, और अल्लाह के नाम का उसके ऊपर जिक्र करो। ठीक है, खाने के वक्त नहीं बल्कि छोड़ने के वक्त जिक्र करने का हुक्म अल्लाह ताला ऐसे फरमा रहे हैं। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरो, इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला तो जल्द हिसाब देने वाला है। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको हिसाब के लिए तैयार रहने की, तैयार होने की अल्लाह ताला की मोहब्बत के साथ और आफियत के साथ तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।